अं नमो भगवते वासुदेवाय अं नमो भगवते वासुदेवाय अं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तचो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपा तम वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीमद्भागवतं स्कन्दस्य अध्याय 16 श्लोक नंबर 48 49 और 50 48 और 49 में तात्पर्य नहीं है, तो आज हम लोग 50 नंबर श्लोक पाठ करके जो भी आलोचना कर सकते हैं। तो मैं दो श्लोक में पढ़ता हूँ, फिर 50 नंबर श्लोक का हम लोग उच्चारण करेंगे।
जब समानु विश्रुजस्रसन्ति ये चिकित्समाने मनु चितयौ च कान्ति भूमण्डल सर्पयायन्ति जस्य मूर्धिनः तस्य नाम भगवतस्तु सहस्रमूर्धनः। हे भगवान, आपकी चेष्टा से भगवान ब्रह्मा इंद्र तथा दृश्य जगत के अन्य अधीक्षक अपने कार्य में निरत हो जाते हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा भौतिक शक्ति को देख जाने पर ही इंद्रियां देख जाती हैं। अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांड को अपने सर पर सरसों के बीज के समान धारण किए रहते हैं। वे सहस्र फण वाले परम पुरुष से आपके सादर नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 49। संस्कृते भगवान भवन अनंतस्तम भासत विद्याधरपति प्रीत चित्र केतु कुरुदह। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, विद्याधर के राजा चित्रकेतु द्वारा की गई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्लोक नंबर 50। चन्नारद अंगिराभ्य ते व्याहत मे अनुशासनम संसिदस्मी तथा राज विद्यान दर्शनाच में। शब्दानुवाद। श्री भगवान उवाच। भगवान शंकर शरण ने उत्तर दिया। तत् यत् जो नारद अंगिराभ्यम, नारदता अंगिरा द्वारा ते तुमसे व्याहृतम कहा गई, मैं तेरी अनुशासनम पूजा संसिध परम सिद्धि प्राप्त असी हो तथा उससे राजन, हे राजन विद्यायाम मंत्र से दर्शनात् पृथक दर्शन से च भी मैं मेरे। अनुवाद। भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरी संबंध में दिए गए उपदेश को अंगीकार करके फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त से भली भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन किया, अतः तुम अब पूर्णतया सिद्ध हो चुके हो। कृपया दोहराई। भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरी संबंध में दिए गए उपदेश को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भले भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन किया है, अतः तुम अब पूर्णतया सिद्ध हो चुके हो। तात्पर्य, जीवन की सिद्धि इसमें कि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ईश्वर के अस्तित्व तथा ईश्वर द्वारा इस प्रकार के सृजन पालन एवं संहार की क्रिया को समझा पा जाए। पूर्ण ज्ञान होने पर नारद तथा अंगिरा एवं उनकी शिष्य परंपरा के सदस्य को संगति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति प्रेम विकसित किया जा सकता है। तब मनुष्य भगवान अनंत का साक्षात दर्शन कर सकता है। तथापि हे ईश्वर अनंत, किंतु अहित विद्यावश वे भक्त दिखाई पड़ती है। अपनी वर्तमान बद्ध जीवन के कारण न तो हम ईश्वर को देख सकते हैं न जान सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नमोभित ग्रामजय में इंद्रिय सेवन मुख्य ही जिहाद स्वयं एवं स्मृत। अपनी सांसारिक पड़ोसी इंद्रियों के द्वारा कोई भी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं के दिव्य स्वरूप को नहीं समझा सकता। जब वह ईश्वर की दिव्य सेवा के दिव्य रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी उसे उन्हें सबके अनुभूति है। ये श्लोक भक्ति साहब सिंधु का 1234 में है। यदि कोई नारद मुनि अथवा उनके प्रतिनिधि के निर्देशन में आध्यात्मिक जीवन बिताता है और भगवान के सेवा करता है, तब वह ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। ब्रह्म संहिता में 5:38 में का कथन है कि प्रेमांजन छुरी तो भक्ति बुलिचन न संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति जम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद को पूजा करता हूँ, जो प्रेम अंजन व आंजो हुए नेत्र वाले भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर स्वरूप को श्याम स्वरूप में देखे जाते हैं। मनुष्य को अपने गुरु के उपदेश का पालन करना चाहिए, इस प्रकार यज्ञ बनकर वह भगवान को देख पाता है, जैसे कि महाराज चित्रकूट के उदाहरण से स्पष्ट है। अम्म ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदामजं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखानितां च। नमं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात देश तारिणे। वंशकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेव वैष्णवेव नमो नमः। नम महाबुद्ध्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशेन। पञ्चतत्वातकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितौ गौडदय पुष्पवंतौ चित्र संदौ तमानुदौ नमो त्रिकाल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च सव्रताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम हरे नाम हैं केवलम कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। ये जो शीर्षक आपका चल रहा है राजा चित्रकेतु के परमेश्वर से भेंट, ये बहुत लंबे समय से बहुत वरिष्ठ भक्तों से आप श्रवण करते आ रहा है, तो इसमें भगवान का साक्षात अभी भक्त का भेंट हुआ है। और आज जो 50 नंबर श्लोक में भगवान चित्रकेतु महाराज को बहुत सुंदर ढंग से सरल भाव से जो कि हम हृदय में धारण कर सकते हैं उसी भाव से उन्होंने उपदेश दिए हैं कि ये हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जो बहुत बड़े प्रसंग को सार सार अल्प समय में जो श्रोता एवं वक्ता को हृदयंगम हो सकता है इसे ये ढंग से जो प्रस्तुत किया जाता है उसको बाग्मिता कहा जाता है। चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक कोट हुआ है तो खास करके प्रभुपाद जी ने इसका अंतिम पारा में गुरु का बारे में बतलाए। जैसे आप सुने हैं कि चित्र के तुम्हारे जैसे कोई पुत्र संतान नहीं थे, रानियां तो बहुत थे, कितना रानियां थे 1 करोड़, लेकिन दुख के कारण क्या था कोई संतान संतित नहीं था क्योंकि घर गृहस्थ आश्रम में संतान संतति नहीं है तो माता का गोद तो खाली खाली है और पिताजी को पिंड दान देने में कोई नहीं होता। लेकिन हमारे नीति शिक्षा में ऐसे है नीति है कि जो हमारे संस्कार है उसमें पिता का जब देहांत हो जाता है उनको जो पिंड दान करते हैं पुत्र तो उसको पूत नारक नरक से उद्धार किया जाता है। और जो पुत्र पिंडदान नहीं देता है ना नहीं करता है तो उसको मूत्र साथ तोड़न किया गया है। लेकिन हमारे जो हितोपदेश में और भी कोई शास्त्र वर्णन है तो एक नर को तो उद्धार कर दिया बेटा, ढंग से यदि दिया पिंडदान बकरा। आज आजकल का जगत में तो आप देखते हैं पुत्र कैसे लगभग मूत्र का बराबर है, लेकिन बेटी क्या करता है और जो 23 नर को बच गया जब उनका विवाह बंधन में बंध जाता है उनको जब हस्त्र ग्रंथि होता है उसे 7 फेरा जो घुमाते हैं वेदी का जग वेदी का व विवाह वेदी का उसी समय बेटी ने उसको 23 नर का उद्धार करते हैं। तो इसमें हमको अंदाजा लगा सकते हैं पुत्र बड़ा है कि पुत्री बड़ा है, लेकिन नसीब में है तो पुत्र पुत्री हो सकते और नसीब में नहीं तो नहीं हो, क्योंकि हमारे जो एकादशी महात्मा में एक कथा आता है कि एक राजा ने अपुत्र को थे तो प्रजा प्रदावत्सल थे लेकिन वो अपुत्र का रहे तो आज जैसे हालत हुआ चित्रकेतु महाराज का, तो एक साधु का पास सारे प्रजा गए, राजा वत्सल थे ये भी प्रजा वत्सल थे, तो प्रजा का अनुरोध से महात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिए पुत्र संतान होगा, कब होगा, एकादशी व्रत करने से। तो उन्होंने एक एकादशी व्रत किए जो कि पुत्रदा एकादशी का बात आता है, दो पुत्रदा एकादशी है, लेकिन उन्हें अपुत्र क्यों रहे, महात्मा भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। उन्होंने ध्यान से देखे कि एक समय में जैसे वे ग्रीष्म वैशाख मास होता है, ग्रीष्म ऋतु में वैशाख ज्येष्ठ मास में, तो सबको आप प्यास सताता है, तो कोई गाय का झुंड पानी पीने के लिए तालाब में गए थे व नदी में गए थे, तो ये राजा ने भगा दिया था उनको, उसी कारण उपुत्र के रहे। अपुत्र का रहना बहुत बुरा मानते समाज में, भौतिक जगत में, लेकिन हमारे और आध्यात्मिक दृष्टि से तो इतना गुरुत्व नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने फिर पुत्र संतान उनको प्राप्त हुआ था। आज हम इसी प्रसंग में देखते हैं व सुनते भी हैं कि महात्मा नारद एवं अंगिरा का आशीर्वाद से उनको पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह हर्ष सुख को वर्धन के वहां आगे बढ़ाया उन्होंने। पहले साधु तो मना कर देते थे, क्यों परेशान हो रहे आज संतान के लिए, क्योंकि आगे तुमको दुख मिलेगा, अभी हर्ष होगा बाद में दुख मिलेगा, लेकिन घर गृहस्थ में रहने का कारण, अरे ये आश्रम का नियम भी है, नहीं तो उनको देखने से अशुभ माना जाता है। उड़िया में तो बहुत बुरा शब्द में उसको और संबोधित किया है, स्त्री और पुरुष को देखने से पातक लगता है, पातक अति पातक ऐसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। ऐसे कि जो बांझ है उन लोग स्वामी स्त्री यदि सूर्य को देखेंगे, सूर्य भगवान को पातक लगता है, अपुत्रिक नारी सूर्य को देखिले सूर्य पातक लगे, अपुत्रिक नारी जे डाल धर से डाल छिड़ी पड़े, जो टेहनी पकड़ेगा वो टेहनी भी गिर जाएगा पेड़ का, और अपुत्रिक नारी देउड़ को गोले देउड़े दियो लुचे, अपुत्रिक स्त्री व बांझ पुरुष एवं बांझ स्त्री यदि मंदिर के जाते तो भगवान छुप जाते हैं, कितना बुरा शब्द से है उसको सम्मिलित किया गया। लेकिन ये तो भाग्य का विडंबना है, और ब्रह्म भाई तो पुराण में लिखा हुआ कि जो पूर्व जन्म है पिछले जन्म में उन्हें लोहा चोरी किए वो अपुत्रिका रहेंगे, जिसका चश्मा लगता है वो पहले ग्रंथ से चोरी किए हैं, जिन्होंने मिठाई नहीं दे के खाया उसको बात रोग होता है, जो गाय को सताया बेचा उसको उदर रोग होगा, आप देख लेना वो गरुड़ पुराण में सब लिखा है। तो जो भी हो आज जो प्रसंग है प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि जैसे नारद मुनि एवं अंगिरा मुनि का निर्देश से उन्होंने जैसे उन्होंने बतलाए थे उसी हिसाब से उन्होंने भजन को अपनाया, इसलिए अनंत शेष बाद शंकरषण को दर्शन दिए। हम लोग भागवत में और प्रथम स्कंद में जब नारद मुनि ने उनका माता का देहांत हो गया, उन्हें उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी जो चतुर्मास चल रहा है उसी समय का घटना था, वो तो चतुर्कुमार ने वहाँ आए थे एवं उनका माता ये भी सेवा किया करते थे। अब सुने हैं कि नारद मुनि बहुत शांत शिष्ट थे, कोई नटखट नहीं थे, माता भी सेवा किया करते थे और नारद मुनि भी सेवा करते थे, और उनका जो अवशिष्ट उशिष्ट उनको मिलता था, क्योंकि साधन में हमको आगे बढ़ने के लिए तीन चीज का जरूरी है, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, ही तीन साधन है बल, भक्त का पद जल व चरणामृत एवं भक्त का चरण का धूलि एवं भक्त भुक्त शेष ये साधन है बल। भगवान को जो भोग लगा जाता है उसमें प्रसाद हो जाता है, फिर कोई भक्त सेवन करता है तो महाप्रसाद होता है, और वो महाप्रसाद जबरदस्त छीन के नहीं लेना है, कि हम प्रचार में जाते हैं तो हम कोई जगह में देखते हैं कि सहजिया टाइप का है,
लोग प्रसाद हमको प्रसाद दे देते हैं, बाद में दो हाथ ऐसे करके बोलते थोड़ा प्रसाद दे दी। लेकिन हमारा वैष्णव सदाचार है कि वैष्णव को संतुष्ट कीजिए, उसका बाद उनका अनुमति से प्रसाद लीजिए तो साधन का बल होगा। आ कोई महत का जब जब तक आर अभिषेक नहीं हुआ उनका पद धूलि से अब आगे बढ़ नहीं सकते। ये रघुगुण प्रसंग में भक्त का पद जल चरणामृत जब तक आप आरोह ग्रहण नहीं किया कि शरीर में नहीं धारण किया तब तक तुम उद्धार होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो इन्होंने गुरु का निर्देशन बहुत बढ़िया से बढ़िया पालन किए और सेवा भी किए थे। तो नारद मुनि भी उनका सेवा किए थे, उनका महामहा प्रसाद ग्रहण किए। ऐसे समय आया कि माता का सर्प दंशन से शरीर छूट गया तो उन्होंने बहुत खुश हुए। अभी कोई भौतिक जगत ने बता दिया कि तुम्हारा मामी मर गया, हमारे मामी मर गया, बढ़िया हुआ, तो गांव वाले बहुत बुरा मानते कैसे बेटा है बोले। लेकिन भक्त के लिए बहुत अच्छा है भौतिक बंधन से, और हमको साधु लोग छोड़ा देते हैं। मेरा एक अनुभव है कि हमारे पिताजी 12 साल में हमारे गुजर गए थे, मामी हमको बहुत पाल पूछ के भड़क किए थे। तो नहीं बोल के मैं इस कन्म में जन्म किया था, 5 साल का बाद में गांव गया था, एक दिन रोक के मैं वापस आ गया। दोबारा जो जाने के मैं तैयारी किया था, हमारा चिट्ठी आया था, तो मैं जिस दिन जाने वाले थे हमारे परम पूज्य वैष्णव महाराज ने मना कर दिया मेरा 1 घंटा पहले। तो मेरा थोड़ा नाराज हुआ मैं महाराज को, थोड़ा और कठोर भाषा में भी बोल दिया आपका मामी को इधर आप रखे, मेरे को मना कर दिया बोल के। तो फिर कुछ दिन का बाद फिर थोड़ा देर में मैं अनुभव किया कि अच्छा मैं मामा का पर आसक्त था, इसलिए तो साधु है उनका कृपा से मैं वृंदावन रहा हूँ। इसलिए फिर उसका अब मैं दोहराया नहीं, अब मैं दुखी हुआ कि महाराज को कुछ बुरा बात बोल दिया बोल के, ये मेरा अनुभव है। तो ऐसे ही नारद मुनि बोल के बढ़िया हुआ मामी हरि बोल हो गए, तो उन्होंने सीधे उत्तर दिशा तरफ चले, क्योंकि उनको जो 4 कुमार थे उनको बहुत बढ़िया ढंग से भगवान का नाम रूप गुण का उन्होंने बतला दिए थे। यहाँ भी प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि नाम रूप गुण तथा लीलाओं का दिव्य स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि गुरु का जब तक आशीर्वाद नहीं हो रहा है, और ये भी खाली गुरु का आशीर्वाद से नहीं होता है, शिष्य को भी गुरु का निर्देश पालन करना होता है। फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए दीक्षा ले लिया तब तो कोई काम बनने वाला नहीं। इसलिए हमारे शुभ कुमार बताते हैं कि उनका पास जो कोई दीक्षा लेने जाता है तो बोले तुम जयपति महाराज से ले लो दीक्षा, क्योंकि मैं तुमको विदेश नहीं भेज सकता, 5-6 साल चक्कर घुमा देते, धीरे धीरे रखा तो दीक्षा मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि शिष्य को गुरु का शासन में रहना चाहिए, और गुरु जो निर्देश देते हैं उसको ढंग से पालन करना चाहिए। ये जो साधन भक्ति का अंग जो उन्होंने बता देते हैं, उसको साधन करते करते क्या होता है ना, हम प्रेम भक्ति और भाव भक्ति को चले जाते हैं। जैसे साधन भक्ति 64 अंग है, उसको हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम भाव भक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक श्लोक भी आप लोग को याद होगा, यार जस हरेदास कर्मणा मनसागिरा कथित तसित कथित होता महात्मान प्रकाशन्ते महात्मन। हम गुरु को जैसे श्रद्धा करते हैं तो भगवान को जैसे हम श्रद्धा करते हैं तो गुरु को भी ऐसे श्रद्धा करना चाहिए। ये दोनों बराबर होने क्या होगा ना, हमारे जो भगवत भक्ति दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु चक्षुदान दिए दिए, चक्षुदान दिल जयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये प्रेम भक्ति हमको तब प्राप्त होगा कि यथाजथ रूप से गुरु का निर्देश को पालन करना चाहिए। तो नारद मुनि ने यथाजथ भाव में पालन किए थे, वह भगवान का हम जैसे हम देखते हैं अंतिम पारा में प्रभुपाद भी एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयंती जम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजन। और वो भगवत गीता में ये भी बतला गया है कि अब भगवान को हम जिसी भाव से भजन करते हैं उसी भाव से हमको फल प्रदान करते हैं। ये जो था मंग प्रबदनते तांग तथैवा भजाम। मतलब क्या है ना, भगवान जैसे आज शंकरसन रूप में हम यहाँ आ रहे, चित्रकूट महाराज ने उनको दर्शन कर रहे हैं जिनका हजार फण है, सहस्र फणा है उनका, और ब्रह्मांड को कैसे ढोए हुए हैं, एक सरसों का जैसे दाना है, उसी रूप में उन्हें दर्शन कर रहा है। क्योंकि भक्त का अभिरुचि अलग अलग है, इसलिए भगवान भी अलग अलग रूप में प्रकट है। जैसे हमारे मंदिर में गौर नीता है, कृष्ण राम राधा श्याम सुंदर, दूसरा जगह में राम भी है, एवं दक्षिण भारत में हम जाए कुर्म भगवान है, एवं हमारे लघु भागवत मृत्यु में वर्णन है कि हर भगवान का एक एक लोक है। तो हर लोक में भक्त लोग और उनको अलग अलग रूप में उनको पूजा करते हैं अपना रुचि अनुसार। और साधन भक्ति करते हुए हमारे जो भाव भक्ति को आता है तो उसमें भाव किसका सख भाव होता है, कि वात्सल्य, किसका माधुर्य भाव, किस उदास्य भाव, कोई शांत भाव में होते हैं। लेकिन गुरु का निर्देशन का कट्टर से पालन करना पड़ता है, तब धीरे धीरे क्या होता है, अस्थाई भाव में वो भाव होता है। मैं एक भक्त को पूछा था कि आप मंदिर में जब आते हो गौरनीता कैसे देखते हो, तो उन्होंने बोले कि भाई कभी कभी मैं उसको प्रभु रूप में देखता हूँ, कभी मित्र रूप में देखता हूँ, कभी कभी वात्सल्य भाव में आता। किस समर राम को वो एक ही उत्तर दिया, राधा श्याम सिंह को यही से उतर। तब मेरे को पता चला कि अभी भक्त अब भाव भक्ति को आया नहीं, अभी साधन भक्ति में है, अभी साधन भक्ति नया नया भक्त है, इसलिए उनका जो भाव है स्थायी रूप में नहीं है, वो बदलता रहता है हर वक्त। और जब हम भाव भक्ति को आते हैं तो जो सखाव हमें कोई है तो किसम राम को प्यार करेगा, उसे दोस्ती कर लेगा। ये गौरनीताई भी, गौरनीताई की भी कोई दर्शन करता है तो जो वात्सल्य भाव में अपना बेटा मानेगा, और जो सखा भाव में है तो सखा मानेगा मानेगा। और राधा श्याम सुंदर कोई जी श्रृंगार रस का है तो जम श्याम सुंदर अवजिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजन, जो कि और आदि रस है, श्रेष्ठ रस है। ये श्रृंगार रस भाव में जो आएगा सखी भाव में, मंजरी भाव में, तो नारद मुनि को जो उपदेश दे दिए थे चतुर कुमार, उसी भाव से उन्हें ध्यान करते हुए चल दिए, तो भगवान एक पलक के लिए उनको दर्शन दिए थे, तो उन्होंने फिर गदगदा हुए, अष्टसात्विक विकार हुआ उनका, रोमांच कंपास तरंग भाज। और प्रसाद सेवन का पहले भी हम लोग एक मंत्र बोलते, सबको याद होगा, से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुणगा प्रेम डाक श्री। लेकिन हम लोग कितना गुणगान कर रहा है, क्योंकि निंदा करना तो निंदा है, और चटनी का जैसे है, चटनी का नाम सुनते ही अब जीव में पानी आ जाता है। ऐसे कोई भक्त का निंदा करने के लिए हमारे जीव में इसे तुरंत था, हम एक कुछ बोला तो वो बड़ा चढ़ा कर और आगे बोलेगा। लेकिन वैष्णव अपराध को सावधान होना चाहिए, लेकिन सही अन्नामृत पर राधा कृष्ण गुणों गाओ ये नहीं होता है, क्योंकि हमारा भगवत बुद्ध प्रसाद को भगवत बुद्धि नहीं है। ये मिर्चा नहीं हुआ, ये लवन नहीं हुआ, ये अच्छा ज़्यादा मसाला कर दिया, हम थोड़ी बीमार ना है, जो डायबिटीज वाला है उनके लिए बैल चाहिए ना, हमको तो चटपटी चाहिए, तो हमारे भगवत बुद्धि नहीं हो रहा। क्योंकि कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, ये चार जो है वो बराबर है, इसलिए जगन्नाथ दारू ब्रह्म है कि नहीं, ते वे से अन्न ब्रह्म भी है, और द्रव्य ब्रह्म है गंगा माता। जो भी हो तो नारद मुनि ने एक झलक के लिए दर्शन किए, फिर भगवान अपना स्वरूप के हटा दिए। थोड़ा भगवान का ये है कि भक्त को थोड़ा विश्वास दिला दिए, थोड़ा चकमा दे दिए, बाद में उन्होंने प्रयास किए ले हुआ नहीं, तो आकाशवाणी वहां पे असंभव है। तो आज हम देखते हैं कि शंकर शरण को साक्षात और चित्रकेतु महाराज ने दर्शन किए। जैसे
ध्रुव महाराज ने छोटे से नन्हा लल्ला और सौतेली माता उनको थोड़ा फटकार दिया, वो सीधे माता को पूछ दिए कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोले, माता बोल दिए कि सुरुचि ना, ये सुरुचि तो फटकार ही सुनी थी, बोले कि और जंगल में रहते हैं। तो कौन से जंगल में, कौन से वन में, बारह वन का था उसको पता ही नहीं था। तो उन्हें सीधे रात में बाहर आके आगे नारद मुनि ने फिर बीच में आ गए, क्योंकि जब तक हमारा दीक्षा नहीं हो रहा है, कोई सदगुरु का सद वैष्णव का चरण आश्रय नहीं हो रहा है, तब तक हमको भक्ति का कोई शुरुआत भी नहीं होता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में आदो पादाश्रय, उसका बाद दीक्षा और शिक्षा आदि आगे चलता है। तो नारद मुनि भी फिर चेला को थोड़ा परीक्षा ले लिया, इसलिए उसी परंपरा अनुसार हमारे इस्कन में भी कुछ दिन रुका देते हैं, 6 महीना के बाद उन्होंने पादाश्रय ले सकते हैं, फिर आगे जाके दीक्षा भी हो जाएगा। दोनों दोनों को परीक्षा करेंगे, क्योंकि उड़िया भाषा में एक कहावत है, गुरु करो जान के, हिंदी में भी इसको बताते हैं, और पानी पियो छान के। नहीं तो क्या होगा, अब अंधा गुरु को पकड़ लिए तो वो गड्ढा में भी आप भी गड्ढा में, दोनों समाधि हो गया। हमारे पुण्यचांद प्रभु प्रभुपाद का शिष्य, उन्होंने बताते हैं कि पापी गुरु और लोभी चेला दोनों नरक में ठेला में ठेला, दोनों फिर वहीं भजन करेंगे कीर्तन के, जो भी हो। ठेला में ठेला मतलब भजन नहीं होता है, वो जातना दिया जाता है, जमदूत सताएंगे वहाँ। तो इसीलिए हमको ये शिक्षा से मिलता है क्या ना, गुरु महाराज का जो दिया हुआ जो निर्देश है, हमारे प्रभुपाद जो निर्देश दिए हैं उनको यथाजथ रूप से पालन करना चाहिए। आज अंगिरा और नारद मुनि का निर्देश से आज क्या हुआ ना, और चित्रकेतु महाराज भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान ने उनको सीधे से बात कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज को नारद मुनि जब बोले कि तुम छोटे से नन्ना हो, अभी क्यों नाराज होके जा रहे हो, अभी खेलने कूदने का समय है, तो उन्होंने सीधे उनको जवाब दे दिया बढ़िया से, बोले आप कोई ईमेल एड्रेस आईडी कि मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, भगवान का तो आप हटिए। तो नारद मुनि बोले, यार ये तो पक्का चलाए कट्टर है, छोटा से लाला है लेकिन जवाब में तो बहुत पका है, क्योंकि देखिए कि ये चला वो मेरा बात मान सकता है, क्योंकि उनको बुला रहे थे नारद मुनि, तो अब खेलने कूदने का उम्र है, चले जाओ, तुम्हारा सौतेली माता तुमको गोद में बैठा के कुछ कितना लाड़ प्यार किया है, और कितना तो टाटी पिसा भी कर दिया, तो पूछ के साफ सुथरा करके आपको वो लाड़ प्यार किए, आज थोड़ा सा बात डांट दिए तुम नाराज हो गया। तो जवाब दे दिए नारद मुनि, तो आप भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकते तो मेरा को रास्ता छोड़ दीजिए। तो नारद मुनि बोले, वो तो पका चला है, तो उनको मंत्र प्रदान कर दिया, और मंत्र को बहुत सही ढंग से उन्होंने जप किया। 6 महीने में भगवान का दर्शन, भगवान जब दर्शन दे दिए उनको, तो बोले ध्रुव महाराज कुछ मांगिए, क्योंकि उन्होंने बोले कि नहीं मेरे को कुछ जरूर नहीं है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांगवा जगदीश कामोए मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवतात भक्ति, ये चैतन्य महाप्रभु बोले कि बोला ध्रुव महाराज क्या बोले, मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था, मेरे को हीरा का टुकड़ा मिल गया, मेरे कुछ जरूर नहीं, क्योंकि उनका सौतेली माता गोद से उसको खींच के उतार दिए थे, फटकारे थे, मैं तुम राजा का गोद में बैठना है तो मेरा कोख में मेरा पेट में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो असंभव है। वो बात बहुत बुरा लगा था, क्यों, वो क्षत्रिय था, उसका शरीर में क्षत्रिय का रक्त प्रवाह हो रहा था नन्ना से लेकर 5 साल का, लेकिन बात बहुत सीरियस लिया, बहुत गुरुत्वपूर्ण ये विचार है, इसे हमको होना चाहिए। तो छे जो भगवान का दर्शन हो गया तो सीधे मना कर दे, लेकिन भगवान बोले देखो अभी मैं तुमको कुछ नहीं दे रहा हूं और समरा बदनामी होगी, इतना छोटे नन्ना बालक अभी तपस्या किया मधुबन में 6 महीना, पत्ते खा के हवा खा के पानी पी के, लास्ट में तो उन्हें हवा खा के पूरे एक पैर में खड़े हो गए, ये 14 ब्रह्मांड कंपने लगा, सबका सास प्रसाद हो गया, सब लोग फिर परेशान हो गए,
भगवान पास, भगवान नहीं जानते थे, परमात्मा रूप में भगवान हर प्राणी का अंदर में है और अणु परमाणु में भी है, लेकिन ये अनुभव करना इतना आसानी नहीं है, क्योंकि हम काम क्रोध लोभ मोह मध्यम आश्चर्य छह प्रकार के शत्रु है, ये शत्रु से हम घेरे हुए हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बोले कि ये शत्रु को आप छोड़ सकते नहीं, हटा भी नहीं सकते हैं, ये शरीर से उत्प्रोत भाव में जड़ित हुए हैं, आओ अंतिम तक रहेंगे, लेकिन उनका एक उपाय है, उनको काम में लगा सकते हो। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ सागु संगे हरि कथा मद कृष्ण गुण गान, ये उपाय तो जो भी हो तो उसका उपाय भी है, और मत्सरता को हटाना बहुत मुश्किल होता, उसका लक्षण हम कैसे पता करें? जैसे मान लो मेरा पास एप्पल का मोबाइल है, आपका पास जियो का है, जियो का दाम कितना है? 1,500 रुपया, एप्पल का 25,000 से 40,000 80,000 भी है, तो आप मेरा को सीधे नहीं बात कर सकते, आप दूसरे से बोलोगे अरे बहुत बड़ा वीआईपी है यार, हाँ बात बढ़िया तो ढंग से आपने बोला, लेकिन आपका अंतर मात्सर्यता है, ये मात्सर्यता अलग, दूसरा का भला देखने से आप सह नहीं सकते। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बताए थे कि कभी कभी हम नया अच्छा धोती मिल जाता है, कभी मोबाइल मिल जाता है, कुछ भी सामान मिल जाता है, तो हमको रहा नहीं जाता है, खास करे माता बुरा मानने नहीं, उन लोग थोड़ा दिखाने का शौक होता है, प्रभु जी को लोग को भी, क्योंकि प्रभु जी बहुत बढ़िया प्रेस करके पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा देखे देते हैं, क्योंकि पूरे दूसरा को भी दिखाना है ना, तो उसी समय कोई देख लिया तो बुरा हाल कर देते हैं। मेरा एक लीला याद है, हमारे यहाँ मटका फोड़ा लीला होता है, हमारे एक भक्त थे बहुत बढ़िया सिल्क का कपड़ा धोती चादर पूरा बढ़िया टलन प्रेस करके लेके आए थे, और उनको क्या किया भक्त लोग, उनका अंदर भी मात्सर्यता रहता है, तो उनको क्या किया है, जो बोले कि अरे आज बहुत बढ़िया प्रेस करके आया है, उसको फंसाते हैं, आज उसका धोती को खराब करेंगे, उनको किया दिया मालूम है, हानि का वो तोड़ने के लिए दे दिए, तो हानि तोड़ दिया पूरा बिचरा का प्रेस का धोती पूरा हरी बोलो, हम भक्त बन जाए गया, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन अंदर तो बैठा हुआ सार्वभौम पर बोल रहे थे, ये शत्रु का डर से हम जंगल में आ जाते हैं साधु बन के, लेकिन अंदर का शत्रु तो अंदर बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, दूसरा अच्छा देखने से जो सह नहीं सकता वो मात्सर्य है उनका अंदर, और मात्सर्य बहुत बड़ा शत्रु है। भक्ति रसामृत सिंध में और भी अमर रूप गोस्वामी बताते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जाबत पिशाची हृदय वर्तते, भोग करने का प्रवृत्ति जब तक रहेगा, इच्छा जब तक रहेगा, वासना जब तक रहेगा, ये पिशाची जैसे ही है, वो खा लेगा आपका भक्ति को, इसलिए भक्त लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। आप एक गुरु शिष्य का प्रसंग भी सुने होंगे, गुरु शिष्य जा रहे थे और घोड़े में गुरु जी बैठ गए, चला पीछे पीछे चल रहे थे, तो उन्होंने बोले कि घोड़े का ऊपर से जो भी गिरेगा ले लेना है, तो फिर कुछ का दिन का देर का बाद कुछ लूटा कमर गिर गया, फिर चला ने उठा लिया, फिर कुछ देर का बाद फिर घोड़े ने डट गया टॉयलेट गया, उसको भी उठा लिया, ये गुरु जी बोले हैं, गुरु जी का निर्देश पालन करना है बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है, तो उन्होंने पहले नाराज हो गए गुरु जी, क्योंकि शिष्य बुढ़वक था, उपस्थिति बुद्धि नहीं था उनका, कौन सी चीज उठाना कौन सी चीज नहीं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु जी ने एक लिस्ट बना दी A to Z, 1, 2, 3 करके नंबर मार्किंग कर दिए, उसमें बहुत मजेदार बात है, गुरु जी का नाम लिखे ने खुद जाने का बाद ये के और ड्रेन बार नहर आया तो घोड़ा ने उसे जंप लगा दिया, लांग गया, तो गुरु जी गिर गए, जितने लुटा कमल था उसमें टॉयलेट नहीं किए थे, उसे पहले टॉयलेट किए थे, आज लुटा कमल सब बैठे सब गिर गया,
आजकल तो मार्सिडीज और इनोवा प्लेन भी रही है, उससे हम लोग यात्रा करते हैं, गुरुजी लोग भी प्रचार के लिए जाते हैं। अभी गुरुजी गिर गए तो सब उठाया, गुरुजी को उठाया नहीं, बड़े ऊपर नाराज हो गए गुरुजी, अरे मूर्ख तुम क्या किया, बोला गुरुजी लिस्ट में तो आपका नंबर नहीं है। लगभग हम लोग ऐसे ही शिष्य है, इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान से ढंग से विचार करना चाहिए। शास्त्र में यह भी है कि एकादशी में फल मूल जल गुड़ गुरु वाक्य और औषध दवाई ले सकते हैं। कोई मुख्य उद्देश्य के लिए गुरु महाराज बता सकते हैं कि आज चावल खाओ, चपाती खाओ, उस समय हम चावल भी खा सकते हैं अपना मनमानी से नहीं। ऐसे कोई घटना है, अभी टाइम तो आने वाला है, तो आप उसको समझ लीजिए कि हम कौन से गुरु हैं। एक भोगी होता है, एक है, और गुरु महाराज बोलने का पहले उन्होंने बता, गुरु महाराज का मनोभाव समझ जाते हैं, और एक गुरु त्यागी होता है। जो एक नंबर का पहले वाला शिष्य है, उन्होंने गुरु महाराज क्या सोच रहा है उसको पहले जान लेते हैं, ये तो मुख्य टिकट का शिष्य। और ये भोगी है जो गुरु का संपद से भरसा करता है। ऐसे ऐसे शिष्य मैं जानता हूँ, कभी कभी अपना जो इच्छा नहीं पूर्ति है तो गाली भी देते हैं, नाम नहीं बोलूंगा। और एक त्यागी शिष्य होता है, गुरु बोलने भी सुनेगा नहीं और करेगा भी नहीं, तो गुरु त्यागी होता है। और भागवत में और एक बहुत बड़ा प्रसंग है जो कि ब्रह्मचारी के लिए भी वो काम में आता है। आप लोग श्लोक याद होगा, मात्रा सूत्रा दुई सभा बीते आसने में बा बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यान कर सती। सो व्यासदेव ने बोलते जा रहे थे और जयमणि जी लेख रहे थे, इस श्लोक जब आया तो अपना डट पेन में लेखनी राख दिए जयमणि जी ने, कि पहले डट पेन नहीं था, लेखनी था लोहे का, ताल पत्र में लिखते थे। हमारे याद है इसे, इधर और काली है, यहाँ से चुबा चुबा के लिखते थे। तो कंडीशन था कि व्यासदेव नॉन स्टॉप बोलेंगे, रुकेंगे नहीं। जयमणि जी ने, गणेश जी का अवतार है, उन्होंने बोले मैं भी नॉन स्टॉप लिखूंगा, रुकूंगा नहीं। ये श्लोक जब आया, ये श्लोक है क्या ना, मात्रा माँ माता एवं सास दोहित्र अपना बेटी, इन लोग का साथ एकांत में छोटा जगह में कभी भी महात्मा लोग को नहीं बैठना चाहिए, पिताजी लोग को नहीं बैठना चाहिए, उनका भाई बड़े भाई को भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यान अपी कर सती। आज व्यासदेव गुरु है, आज जयमणि शिष्य है, तो लेके डट पेन रख दिए। तो व्यासदेव बोले लिखो, बोले नहीं लिखूंगा, क्योंकि ना विद्वान लोग कभी चक्कर में नहीं आते। तो तुरंत व्यासदेव ने क्या किया, अपना भेष बदला दिए, क्यों सत्या भेष अवतार ना भगवान का, एक सुंदर से और सुंदरी नारी हो गए, ब्यूटीफुल वो मैन हो गए, डमरू जैसे उनका और कट्टी कमर था, बहुत छोटे था, और सिंह जैसे शेर का जैसे उनका और नितंब था, और उरज भी शेर का जैसे था, और उन्होंने बहुत पतला वस्त्र पतली वस्त्र पहने हुए थे। अभी जैसे श्रावण महीना है, ऐसे पूरा बारिश आ गया, आंधी तूफान आ गया, तो व्यासदेव ने जहाँ पर जयमणि जी ने ठहरे हुए हैं वहाँ आ गए, ब्रह्मचारी आश्रम है ना, तो उनका सारे के सारे चेहरा उन्होंने अपना वीडियो कैमरा में कैद कर लिया। और व्यासदेव बोले कि बाबा यहाँ पर हमको थोड़ा रहने के जगह मिलेगा, बोला नहीं नहीं नहीं, नो एंट्री, ये ब्रह्मचारी आश्रम है, यहाँ नहीं सह रख सकते, और फिर मैं अकेले हुए, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए एक दूसरा भक्त आवश्यक है। मना तो कर दिया, लेकिन माता भी कम नहीं थे, क्योंकि तो व्यासदेव थी ना, जो बाबा को बोले अरे शास्त्र में तो वर्णन है कि माता को गाय को बूढ़े लोग को महात्मा लोग को आश्रय देते हैं, शास्त्र में सुना हूं, तो बाबा पिघल गया जन्म जयमणि जी ने, तो बोले ठीक है बगल का कुटिया में रुक जाऊं, लेकिन मैं भी बुलाऊंगा तो आप खुलना नहीं दरवाजा। लेकिन उनका जो चेहरा शकल देखे थे, एक भीगे हुआ था शरीर, चेस्ट बेस्ट सब देखे हुए थे, उनको नींद नहीं आ रहा था, पूरा कंप्यूटर चालू रहा था। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाए, बोले खोलिए। बोला कौन? बोला नहीं नहीं खोलने के लिए माला किए हैं। बोला नहीं मैं अपना जयमनी बोल रहा हूँ। अरे नहीं आप तो बताए थे कि मेरे को खोलने के मना किए। तो उन्होंने एक काम का आवेश से उन्होंने छात फोड़ दिए, अंदर डाल आ गए और व्यास देव को उन्होंने गोद में बैठा लिया। ब्रह्मचार्य को कोई अनुभव तो ज्ञान नहीं है, जो घर गृहस्थ में जिन लोगों है वो मानभंजन किए होंगे उनको अवश्य याद होगा। तो अपना बांधव क्या अभी मनाने लगे चाटू पर का बात से। कुछ देर का बाद उन्होंने किए बात करते करते और काम का आवेग और ज्यादा बढ़ गया। सार्वभौम प्रभु बोल रहे थे एक बार उर्वशी का पूर्वा उर्वशी प्रसंग में, काम जब सवार होता है उसमें ज्ञान ध्यान सर्ज बिर्ज सब हो जाता, क्योंकि उनका अनुभव होगा, क्योंकि वो जो एक गृहस्थ है। तो आज क्या किए ना, जयमनी जी ने एक गाल में चुमा मार दिया व्यासदेव, मार दिए जो अपना स्वरूप हटा दिए। और चुमा कहाँ मारे थे? पक्का दाढ़ी में मारे थे। एक भक्त ने बोला मुदनीनांग मत्ति ब्रह्म बल के बताए थे, तो चुमा मार दिए, किस कर दिए, दपका हुआ दाढ़ी में मार दिए। बोले गुरुजी, गुरुजी तुम बता रहे थे ना विद्वान लोग का मत्ति ब्रह्म नहीं होता है। नहीं गुरुजी मैं अभी बिल्कुल आप जो बोलेंगे हमें करें। तो ये प्रसंग से हम लोग जानकारी होता है कि गुरुजी से कभी हम जीत नहीं करना चाहिए। गुरु जो बोल रहे हमारे हित के लिए बोल रहे, कभी फटकार रहा है तो हमारे हित के लिए। तो उनका निर्देश अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को दर्शन कर सकते हैं यदि हमारे अरे ऐसे श्रद्धा भगवान से जैसे है और गुरु से भी ऐसे। एक अंतिम पारा में प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोक्यंती जम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम। तो हम दीक्षा भी लिया, ब्राह्मण दीक्षा लिया, पता नहीं सन्यासी के बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। तो आप लोग को कभी जप करने समय कभी सपनों में क्या भगवान साक्षात दर्शन, ऐसे तो साक्षात दर्शन है श्याम सुंदर गौनीता की समर राम है, लेकिन ये कनिष्ठ स्तर के भक्त के लिए विग्रह में ही आओ भगवान दर्शन करना। उत्तम भक्त का भी है, सभी लोग का विग्रह था, लेकिन ये संभव इतना आसानी नहीं है। तो हमारे प्रेम रूप का अंजन व कज्जल हम यदि लगाएंगे आंख में तो भगवान को हमेशा देख सकते हैं, ये संभव है। ये प्रेमांजन व प्रेम का अंजन कौन लगा सकते हैं? सदगुरुदेव। अब हम भी उनका निर्देशन पालन करेंगे। तो आज जैसे अनंत देव को उन्होंने शंकरसन को दर्शन किए और भगवान से बात हो रहा एवं ध्रुव महाराज भी बात किए, नारद मुनि को दर्शन हुआ लेकिन बात नहीं कर पाए, लेकिन परवर्ती जन्म में उन्हें नारद मुनि बने। तो भगवान को लगभग और बिना भिसा पासपोर्ट में जाते हैं, वैकुंठ में दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को साधन भक्ति को कड़ा से पालन करना और आगे जाके फिर हमेशा श्याम सुंदर को हम दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो बता सकते हैं, प्रसाद का वहां टाइम भी हो रहा है। श्रीमद् भागवतम की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी।